ओम शांति। फिर से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी अक्सर करके 3 बार तो ओम शांति बुलवाते हैं और साथ ही साथ कई बार शांति से और भी आगे ले चलते हैं। कई बार दादी जी बोलते हैं ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रेम, ओम ज्ञान, ओम शक्ति आदि जो आत्मा के 7 गुण हैं, उन गुणों में भी दादी जी हम सबको स्थित कराते हैं, जिससे कि हम सब सभी गुणों में स्थित रह करके अपने जीवन के सभी कार्य व्यवहार कर सके। अभी शीलू बहन जी बहुत अच्छी अच्छी बाबा की बातें सुना रहे थे और ब्रह्मा बाबा तो हम सबका लक्ष्य है ही, रोल मॉडल है। हम सबको भी बाबा की तरह ऐसे ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है और अपनी मंजिल की संपूर्णता को प्राप्त करके बस बाबा के साथ ही साथ घर चलना है और फिर नई दुनिया में आके पार्ट बजाने। बाबा अक्सर करके कहा करते हैं और हम सबको भी जीवन का अनुभव है कि जैसे जब मौसम बदलता है, गर्मी से कुछ बरसात आएगी, सर्दी आएगी, तो मौसम बदलता है तो मौसम की अनुकूल हम तैयारी कर लेते हैं। मानो बरसात का मौसम आने वाला है, आया तो हम पहले से ही छतरी है या रेनकोट है बरसाती है, उन सबको तैयार कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले बदले हुए मौसम में अपना बचाव कर सके। सर्दी आने वाली होती है, गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, स्वेटर कोट आदि उसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे ज्ञान मार्ग में भी अभी कौन सा मौसम चल रहा है और अब कौन सा मौसम आने वाला है, क्योंकि बाबा ने कहा है विधि विधान तो आदि से लेकर जो चले हैं वो बदलते ही आ रहे हैं और बदलते रहेंगे, और समय प्रमाण हमें भी उसी रीति से अपनी तैयारी करनी है। इसलिए आज का विषय जो है बहुत बहुत जरूरी विषय है, कैचिंग पावर, क्योंकि ये कैचिंग पावर हमारी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी, उतना उतना हम तीव्र गति से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे। हमें याद है कि जब हम लोग शुरू में ज्ञान में आए 61-62 में, तो बाबा की मुरलियां चला करती थी कि देखो बच्चे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, नहीं तो बहुत विकर्मों का खाता बन जाएगा। बाकी मनसा में तूफान तो अंत तक आते रहेंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, बाबा और सूक्ष्मता की ओर लेते गए कि वाणी में भी कुछ ऐसे कटु वचन नहीं बोलने हैं जो किसी को दुख दे। दुख दिया तो क्या होगा, दुखी हो मरेंगे, बाबा ने कहा है, बहुत मीठी वाणी के ऊपर भी। फिर बाबा और सूक्ष्मता की ओर ले गए कि मंशा मैं भी अगर किसी के प्रति कोई ऐसी बात रखी है तो मंशा में भी नहीं रखनी है, बहुत बहुत शुभ भावना शुभ कामना हमें सबके लिए रखनी है, क्योंकि मंशा से ही वातावरण बनता है और वो वातावरण बनाने के हम सब निमित्त हैं। और भी बाबा इससे सूक्ष्म में लेते जा रहे हैं, ले गए हैं कि मंशा से भी और सूक्ष्म हमारी वृत्ति है, और जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा ही वातावरण तो बनेगा ही, साथ साथ हम दूसरी आत्माओं के पुरुषार्थ के निमित्त बनेंगे, दूसरी आत्माओं की मार्ग प्रदर्शना के, और जितनी हमारी वृत्ति शुद्ध और महान होगी उतना उतना हम ही नहीं बल्कि हमारी वृत्ति के द्वारा संकल्प के द्वारा हम प्रकृति के तत्वों को भी बदलते चलेंगे। जो प्रकृति के ये पांच तत्व जो हमारे हमेशा के साथी हैं सतयुग के आदि से, तो इसलिए अभी ऐसा प्रतीत होता है बाप दादा के जो महावाक्य हैं, जैसा पार्ट चलता रहा है और जैसा पार्ट चल रहा है बाप दादा के इशारे हैं कि अभी तक हमें याद आता है अव्यक्त बाप दादा जब आते थे पहले तो घंटों तक पूरी पूरी रात भर तक हम बच्चों की पालना करते थे, एक एक पार्टी से एक एक व्यक्ति से भी मिल करके उसको बल शक्ति भरते थे। धीरे धीरे वो समय कम होता गया और बाबा समूह में ही सिर्फ मिलने का रह गया, और अभी जो देख रहे हैं इस सीजन में कि बहुत कम समय में ही बाबा हम बच्चों में बहुत बहुत शक्ति भर के बस चाहते हैं अब हम बच्चे ऐसी हमारी मानसिक स्थिति हो जाए, मंशा ऐसी हो जाए कि हमारी कैचिंग पावर भी इतनी स्पष्ट हो जाए कि जैसे हम सम्मुख बाबा के मिल रहे हैं, बाप दादा हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हम कैच करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें ऐसी मानसिक तैयारी करते चलना है कि समय के साथ साथ जैसा बाबा ने कहा है हमें कि वायरलेस होता है ना, मोबाइल होता है, टीवी होता है, बस ऐसा लगता है जैसे सामने सामने ही देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे ही अब ऐसा हमारा बुद्धि का वो है वायरलेस कनेक्शन, और हमारा क्या होना चाहिए वॉइसलेस कनेक्शन। इतने हम निर्विकारी हो जाए, इतनी मंशा हमारी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए कि बस बाबा को याद करें, बाबा जो हमें टचिंग देता है वो हमें ऐसे वो हो जैसे हम सम्मुख सुन रहे हैं, जैसे साकार में बाबा मुरली में सुनाते थे, जैसे गुजार दादी जी के द्वारा बाबा सुना रहे हैं। और ऐसा समय आएगा जब चारों तरफ परिस्थितियां बहुत विकट होंगी तो बस हमारी मंशा इतनी क्लियर हो, और वो मंशा कैसे हमारी इतनी स्पष्ट होगी उसके लिए अभी हम सबको तैयारी करनी है। यही मौसम जैसे कि अब आ रहा है और इसके लिए हम सब कटिबद्ध हो जाए। तो ऐसे परिस्थिति के लिए हमें और क्या तैयारी करनी पड़े। बाबा ने कहा है, कई बार से बाबा कहते आ रहे हैं कि मन जीते जगत जीत, तो मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी यही कहा है, मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो सारा हमारा पुरुषार्थ जो है वो हो ही रहा है मन पर विजय प्राप्त करने का। और मन पर अगर विजय हो गई, हर चीज पर विजय हमारी होती चली जाती है। ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे मन पर विजय प्राप्त करी मालूम है ना। बाबा 1936 में जब ये ज्ञान हुआ, तो एक तो बाबा ने ये पुरुषार्थ किया कि भाई मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, जितने परिवार जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, जो लौकिक पत्नी बच्ची बच्चा, तो ये लिख लिख करके पुरुषार्थ करा ये आत्मा है। तो ये तो आत्म अपने को आत्म स्थिति रहने का पुरुषार्थ किया, लेकिन मन को जीतने का क्या पुरुषार्थ किया बाबा ने, जो बाबा हम सबको भी समय प्रति समय कहता है, रोज रात को दरबार लगाओ। किसकी दरबार? सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की। बाबा ने कैसे मन की दरबार लगाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनना। बाबा ने अपने मन को पत्र लिखा। कैसा पत्र लिखा? हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। तू जैसा जैसा कहता रहा, जहां चलता रहा, मैं आत्मा राजा होते हुए भी तुझ मंत्री के वशीभूत हो गई, तेरे पीछे पीछे मैं भागता रहा और मैं कमजोर होता चला गया। जैसा बाबा ने अनुभव किया, और भक्ति मार्ग में हम सभी अनुभव करते हैं और कह देते हैं अक्सर करके, क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम ये चाहते तो नहीं है लेकिन ये हो जाता है, हम क्रोध नहीं करना चाहते, क्रोध आ जाता है, आदि आदि, ये सभी बातों के हम सभी अनुभवी हैं। तो बाबा भी भक्ति मार्ग में तो कितना था, कितनी बाबा ने नवदा भक्ति की, कितना तीर्थ करे, कितने दान पुण्य करे भगवान को पाने के लिए, लेकिन बाबा को यह भी अनुभव होता रहा कि मन कमजोर, मन ने मुझे कमजोर कर दिया है, मन शक्तिशाली है। फिर बाबा ने और क्या लिखा पत्र में आगे, लेकिन ये मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित होता जा रहा हूं, और मैं अब इतना शक्तिशाली होता जा रहा हूं, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे पीछे पीछे नहीं चलूंगा। ये बाबा ने अपने स्वमान में स्थित होकर के मन को ऐसा पत्र लिखा। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि मैं आत्मा इसका मालिक हूं, तुम दोनों को मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। सुमान में स्थित होकर कहा। बस अब यही आवश्यकता है कि अगर हम अपनी कैचिंग पावर, टचिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहला काम तो ये ही करना पड़ेगा कि मन जीते जगत जीत जो कहा है, मन के संकल्पों के ऊपर हमें अपना नियंत्रण सिद्ध करना होगा। मन हमारे कहने पर चले, हम मन के कहने पर न चले, मन में वो ही संकल्प उठे जो सिद्ध होने वाले हों। मन हमारा इतना निर्मल हो जाए जैसा साकार बाबा का भी देखा। कैचिंग पावर की जब बात आती है तो जैसे खेल होता है ना, कोई खेल होता है मानो क्रिकेट का खेल है, बैट्समैन ने मारा दूसरा कैच करता है, कैचिंग पावर, तो उधर से तो कोई फेंक ही रहा है, बाबा है, बाबा तो हमें शुद्ध संकल्प वाइब्रेशन शक्ति सब चीज का भंडार है, शिव बाबा तो सागर है वो दे रहा है, लेकिन हमारी कैचिंग पावर इतनी स्पष्ट हो कि बाबा जो हमें देना चाहता है दे रहा है उसको हम कैच कर सके, अपने में समा सके, उसे जीवन में उतार सके, और जो बाबा चाहता है शक्तिशाली बन करके हम संपूर्णता को पा सके। तो ये कैचिंग पावर हमें बढ़ानी है अपनी, भगवान तो दे रहा है, जैसे मानो टीवी स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है या मोबाइल का टावर है, वो उधर से तो टीवी रेडियो से आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, गीत आ रहे हैं, न्यूज आ रहा है, लेकिन अगर हमारा रिसीविंग स्टेशन ठीक नहीं होगा, टीवी ठीक नहीं होगा, रेडियो ठीक नहीं होगा, तो हम कैच नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा उसमें खोट नहीं है लेकिन हमारे अंदर खोट है, फिर हमें अपनी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, और जब ट्यूनिंग ठीक हो जाती है तब हम कैच करते हैं, जो बैकग्राउंड नॉइस है पीछे पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस आती है वो खत्म करनी पड़ेगी। आज वही हम बच्चों की स्थिति है कि बैकग्राउंड नॉइस यानी कि ऐसी स्थिति है कि बहुत संकल्प चलते हैं, कभी कोई घर धंधे के संकल्प, प्रवृत्ति के, धन कमाने के, और अनेक प्रकार के संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों में बाबा जो कहना चाहता है जो कह रहा है वो संकल्प कमजोर पड़ जाता है, वो संकल्प बैकग्राउंड में हो जाता है, ये प्रवृत्ति के संकल्प ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बाबा जो हमें कहना चाहता है वो हम कैच नहीं कर पाते, उसको पूरा यथार्थ रीति से वो टचिंग नहीं हो पाती। तो एक तो ये हमें करना पड़े मन, और मन के संकल्पों को हमें बिल्कुल शक्तिशाली करना पड़े, उससे और भी क्या फायदा होगा, केवल बाबा के ही नहीं संकल्प, लेकिन जो अन्य आत्माएं भी आएंगी, और जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है, ऐसा समय आएगा बच्चे कि बस अनेक अनेक विश्व की आत्माएं आपके सम्मुख आएंगी, लेकिन आपका अपना ऐसा ज्वालामुखी योग हो, ऐसी स्थिति हो कि रोती हुई आत्मा आए वो परिवर्तित हो जाए, हंसती हुई चली जाए, जैसे अग्नि में कोई चीज डाली जाती है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ही अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, आपका ऐसा वाइब्रेशन हो, ऐसा स्वरूप हो, उसमें संपूर्ण रीति से वो बदल के चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। हमें यह सौभाग्य मिला है कि ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का, 17 और 18 जनवरी को हम मधुबन में ही थे और बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, उसमें बाबा की हमने वो स्थिति वो वंडरफुल अवस्था देखी जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी का भी लक्ष्य है मन जीते जगत जीत बनना। क्या देखा उसमें, खास करके पहले जब हम लोग बाबा से मिलते थे 1961 62 63 64 में, बस बाबा के सम्मुख आते थे, पहले तो बाबा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस ऐसे बाबा कहते थे, हम सब चुंबक की तरह जैसे बाबा की बाह में खिंच के आ जाते थे, और बाबा के अपने मन के संकल्प इतने पावरफुल थे, इतना बाबा ने आत्मिक स्थिति को पक्का कर लिया था कि जैसे ही हमें बाबा का स्पर्श प्राप्त होता था हम खुद भी विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, और फिर थोड़े समय के लिए बाद बस बाबा ऐसे थपथपा देवी थे, जैसे हमें देह भान में, देह के अंदर लाने का पुरुषार्थ कर रहे हों, क्योंकि पार्टी में और लोग भी होते थे, एक मिलके जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा बाबा से मिलेंगे। तो उसके बाद बाबा टोली खिलाते थे, बातचीत करते थे, कोई भी बात होती थी समाधान करते थे, और एक जाता था दूसरा आता था। तो इस रीति से पहले बाबा समय देके पूछते थे हालचाल, फिर धीरे धीरे जितना 1966-67 वगैरह और आगे बढ़ते जा रहे थे, तो चूंकि बाबा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और बच्चे कई आते थे, सब प्रकार के बच्चे, तो इन्फेक्शन होने का या कोई शारीरिक व्याधि होने का संभावना रहती थी, इसलिए फिर बाबा बच्चों से मिलते थे नैनों के द्वारा विशेषकर। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा दृष्टि देते थे, दृष्टि लेते ही अशरीरी हो जाते थे। इतना बाबा ने आत्मिक अभ्यास पक्का किया हुआ था। लेकिन आश्चर्य तो हमने तब देखा 1969 में जनवरी 17-18 को बाबा से मिलते थे, बाबा से मिलने गए, 6-7 बार मिलने का मौका मिला, और बाबा को बस जाते थे हर बार कि बाबा से ये पूछेंगे, ऐसा ये पुरुषार्थ की बात, सेवा की बात ये करेंगे। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, और बस थोड़ा दृष्टि देके, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक अक्षर भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और ये कर लो ऐसा हो जाएगा, मन के भाव भी बाबा जैसे पढ़ लेते थे। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, अनेक बार जब ऐसे हुआ, तो बाद में हमने बड़ी दीदी, मनमोहनी दीदी होते थे, उनसे पूछा, दीदी ये कैसे होता है, बाबा के सम्मुख जाते हैं और बाबा तुरंत ही उस बात को पढ़ के समाधान दे देते हैं, एक अक्षर भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दीदी ने बड़ा अच्छा बताया था कि देखो, जब आत्मा जितनी कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, जिसका जितना संकल्पों पर विजय प्राप्त हो जाती है, उतना वो आत्मा अपने संकल्प पर विजय प्राप्त होने के कारण दूसरी आत्मा के संकल्पों को तुरंत ही पढ़ सकती है और उसका समाधान कर देती है। इसलिए जैसा उदाहरण दिया कि जैसे पानी होता है, साफ पानी है, हलचल नहीं है, अगर हम अपनी छवि देखना चाहें, वो दर्पण की तरह काम करती है, अपना छवि भी हम देख सकते हैं उस पानी में, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ भी अगर उस पानी में फेंक देंगे, लहरें पैदा होंगी, तो क्या होगा, अपनी छवि स्पष्ट दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही बाबा का अपने संकल्पों पर भी इतना नियंत्रण हो गया है कि दूसरी जो भी आत्मा आती है सम्मुख, उसके मनोभावों को पढ़ के बाबा तुरंत ही उसका स्पष्ट उत्तर दे देता है, उसका समाधान कर देता है। इतनी स्पष्ट बात, पुरुषार्थ की बात। तो हम बच्चों को भी अब अपने अंदर ये चेक करते जाना है कि मेरे भी संकल्प कितना मेरे नियंत्रण में आते जा रहे हैं, और वो तब होगा जब एक तो हमारे संकल्पों की संख्या वो कम होती जाएगी। बस संकल्प बहुत आते हैं, नॉर्मल केस में संकल्प आते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो गई जो स्ट्रेसफुल है, या कोई ऐसी परिस्थिति जो कि हमारा अटेंशन बहुत अपनी तरफ खिंचा रही है, तो मन में बहुत संकल्प आने लगेंगे। तो बहुत संकल्प जो है, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे संकल्प जितने सत्वप्रधान होने चाहिए उतने नहीं हैं, और इस कारण से संकल्पों की संख्या जो बहुत बढ़ जाती है, उस संख्या को कम करने की आवश्यकता है। क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की संख्या को कम करेंगे कैसे, क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ा के, विचारों की गुणवत्ता को बढ़ा के हम अपने विचारों की संख्या को बहुत कम कर सकते हैं। यही तो शिविर में होता है, यही तो अभी शिलू बहन जी करा रहे थे, जो बाद में योग करा रहे थे, बस धीरे धीरे शांति से बोल रहे थे, भाई मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, ईश्वर की संतान। कम विचार और कम स्पीड, विचार भी कम और उनकी रफ्तार भी कम, ये एक तरीका है संकल्पों पर और नियंत्रण करने का। और तीसरी बात है विचारों की दिशा, क्वांटिटी क्वालिटी एंड डायरेक्शन, यानी कि विचारों की संख्या, विचारों की गति और विचारों की दिशा, किधर विचार चल रहे हैं। जितने हमारे विचार एक तरफ कंसंट्रेट होते जाएंगे, अधिक तरफ सब तरफ नहीं भागेंगे, वो विचारों में शक्ति होगी। बचपन में हम सभी ने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, एक वो लेंस को लेके सूरज के सामने रखते थे, तो वही सूरज है वही धूप है, लेकिन वो किरणें एक तरफ इकट्ठी हो जाती है कंसंट्रेट, और उसके नीचे जो कागज या जो चीज है उसे भी जला देते हैं। करा है ना ये प्रयोग, सहज प्रयोग। बस यही विचारों की बात है, अगर विचार अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, उनको हम किसी तरह एक ही दिशा प्रदान कर सके तो बस उन विचारों में बहुत शक्ति आ जाती है। इसी को ही बाबा ने कई बार कहा है एकाग्रता की शक्ति, यही शक्ति है शांति की शक्ति। तो इसीलिए विचारों को एकाग्र करने की भी साथ में कला हो। एक तो ये है साथ साथ कि कैचिंग पावर, हम बाबा की स्पष्ट रीति से कैच कर सकें, ऐसा हमें लगे जैसे हमें अरे बाबा हमारे एकदम सम्मुख बोल रहा है, हम इन कानों से सुन रहे हैं। और क्या करें साथ साथ, दूसरी बात, ये स्पष्टता हमारी तब बढ़ती जाएगी जब हमारी मनन शक्ति होगी, और उससे पहले हमारे अंदर ये महसूसता अंदर की होनी चाहिए, हाँ अब मुझे ये शक्ति की आवश्यकता है। अंदर की महसूसता, जो बाबा ने कहा अगर दिल की महसूसता होगी वो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और महसूसता की ये शक्ति होनी चाहिए कि अपनी कमजोरी की महसूसता कि मैंने इतना तो प्राप्त कर लिया लेकिन ये प्राप्त करना अभी मुझे बाकी है। अंदर की जितना दिल की महसूसता होगी, अपने वीकनेस की महसूसता होगी, एक वो हो, और दूसरा हमें क्या दूसरे की कमजोरी की महसूसता तो तुरंत हो जाती है, सामने वाला है परिवार वाला है, कोई भी उसका ऐसा एक्ट देखा, क्रोध किया उसने या कोई ऐसी बात हुई, तुरंत हमें दूसरे की कमजोरी की तो महसूसता हो जाती है लेकिन अपनी कमजोरी की महसूसता बहुत कम होती है। जिसी को बाबा कई बार कहते हैं हमारी दूर की दृष्टि तो तेज है लेकिन पास की दृष्टि कमजोर है, अपने को हम उतना नहीं देख पाते। लेकिन बाबा ने कहा ये भी परिवार का एक बहुत बहुत बड़ा पेपर है जो परिवार से आता है। दूसरे की हम कोई भी कमजोरी देख लेते हैं, हम दिल में उसे स्थान दे देते हैं और बस हमारी भी प्रोग्रेस हमारी भी उन्नति रुक जाती है। तो इसलिए अभी ये देखना है दूसरे की परवश स्थिति की महसूसता, दूसरा कि कोई ऐसा एक्ट देख रहे हैं तो हमारे दिल में आना चाहिए क्या जो बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा मेरा एक एक रतन मेरा चुना हुआ रतन है, भगवान ने उसे चुना है और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो अपने समय पर अपनी एक्ट करेगा। फिल्म में भी होता है सब एक्टर एट ए टाइम थोड़ी एक्ट करते हैं, कभी कोई एक्ट करेगा, कभी कॉमेडियन करेगा, कभी डांस वाला डांस करेगा, कभी ट्रेजेडी होगी, अलग अलग, लेकिन हरेक की एक्ट अपने समय पर होती है जिससे वो वाहवा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही शायद अभी इस आत्मा का ये कमजोरी का पार्ट है, लेकिन चूंकि भगवान का चुना हुआ रतन है और भगवान ने कहा है कि मेरी लास्ट में लास्ट आत्मा भी जो है चुनी हुई, वो दुनिया की भेंट के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उन सब से बहुत आगे है, क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, भगवान की नजरों में आया है। तो अगर हमारे दैवी परिवार में है तो हम ये कहें कि बाबा आपने उसे चुनकर गलत काम किया, बहुत ये आत्मा तो ठीक नहीं है, नहीं है। भगवान का सिलेक्शन अपनी जगह पर बिल्कुल फिट है, और समय आने पर उस आत्मा के द्वारा जो सेवा होनी है, जो पार्ट चलना है, बहुत वाह वाह का पार्ट चलना है, इसलिए भगवान ने उसे चुना है। तो ये महसूसता हो कभी भी किसी भी आत्मा, क्योंकि हमारी कैचिंग पावर में, टचिंग पावर में ये बातें बहुत आ जाती हैं। जब बाबा से योग लगाते हैं, कहीं संबंधों में कटुता, कहीं अपनी कमजोरी, बाहर की कमजोरी की बात, व्यर्थ संकल्प जो बहुत आ जाते हैं, इस कारण से हमारी कैचिंग पावर जो है वो जितनी शक्तिशाली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और भगवान के भेजे हुए मैसेज जो है, जो बातें हैं, उनमें मिक्स कर लेते हैं अपनी मन मत के आधार पे, परिस्थितियों के आधार पे। तो इसलिए एक तो ये अपनी महसूसता की शक्ति हमें बढ़ानी है, बस पल पल पर हमें ये ही महसूस हो, बस मुझे अपनी ये कमजोरी पर विजय पानी है और दूसरे की कमजोरी का अनुभव न हो, बस वो अपने समय पर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात जो बाबा ने कहा है, जब महसूसता हो जाती है ना, तो धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। परिवर्तन की शक्ति हमें खुद महसूस होगी अपने आप, जैसे हर एक बाबा के बच्चे को अपने में परिवर्तन महसूस होता है, अरे यहाँ आने के बाद तो मेरे में ये परिवर्तन हुआ। जैसे स्थूल परिवर्तन होते हैं, बाहर का खान पीन वो शुद्ध हो गया, पिक्चर संग वो शुद्ध हो गया, बाहर फिल्म या ये नहीं, और कई बातें हमारी परिवर्तन हो गई। तो ये महसूसता जैसे होती है, ऐसे ही हमें फिर और आगे बढ़ने की महसूसता होती जाएगी कि ये सब तो प्रेलिमिनरी हैं, शुरू की बातें हैं, लेकिन आगे हम और बढ़ रहे हैं। उसके लिए बाबा ने कहा, सदैव ये समझो मैं ही अर्जुन हूँ, गीता प्रसिद्ध, भगवान मेरे लिए ही आया है, बाबा मुझे ही ज्ञान सुना रहा है, और इस कारण से मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही बदल करके पूरी सृष्टि को बदलूंगी या बदलूंगा। तो ये जितनी जितनी हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति और आती जाएगी, वो परिवर्तन शक्ति से हमारा जैसे बुद्धि और बहुत स्पष्ट होती जाएगी, और इससे क्या होगा, सबसे बड़ा लाभ हमारे अंदर मनन शक्ति बढ़ती जाएगी, जो आवश्यक है कैचिंग पावर के लिए, मनन शक्ति। जैसे शरीर में भोजन खाते हैं ना, भोजन शक्तिशाली भी हो लेकिन अगर पाचन शक्ति कमजोर है तो शक्तिशाली भोजन का भी खून नहीं बनेगा, शक्ति नहीं होगी, कमजोरी शरीर अनुभव करता रहेगा। ऐसे ही मनन शक्ति भी हमारी शक्तिशाली हो जाए। पाचन शक्ति जैसे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, ऐसी मनन शक्ति मन को शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए मनन शक्ति जरूर आवश्यक है, हम उसे अवश्य बढ़ाएं। कई बार बाबा कहते हैं, कैसे बढ़ाएं बाबा, हमारा मंथन नहीं चलता है। कई बार बाबा मुरली में भी कहते हैं, कई बच्चे बच्चियां आके कहते हैं, तो बाबा उसकी क्या युक्ति बताता है? कई बार बाबा युक्ति बताता है, बच्चे जैसे चित्रों के सामने जाके बैठ जाओ, मानो कल्प वृक्ष का चित्र है, चित्र के सामने जाके बैठ गए और देख रहे हैं जड़ में बाबा ममा और अष्टरतन भी बैठे हुए हैं, बस अपने को ये विजुअलाइज करो, मैं भी बाबा ममा के सामने उन अष्टरत्नों में बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, और मैं इस सृष्टि की जड़ स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बीज रूप आत्मा हूँ, सारी सृष्टि मेरे आधार पर ही खड़ी हुई है। बस ऐसा जितना हम मनन करेंगे, उस कल्प वृक्ष को देख करके, ये पूरा मुख्य थुर जो है सतयुग त्रेता, ओहो मैं ही सृष्टि की मुख्य शक्तिशाली बीज रूप आत्मा हूँ, मुख्य तना हूँ, मेरे आधार पर ही ये पूरा कल्प वृक्ष ठहरा हुआ है, मैं कितनी महान हूँ, शक्तिशाली हूँ, बस अपने स्वमान में अपने को हम स्थित करते जाए, जो बाबा ने अनेकानेक स्वमान दिए हैं, और आगे बढ़ते जाएं, और बिल्कुल जो चित्र है उसका वर्णन, जैसे कि हम दूसरे की सेवा कर रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, उसका हम चिंतन मनन ये करते जाएंगे, कुछ दिनों में ऐसा समय आएगा हमें चित्र की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बस चित्र के बिना ही हम अपने को स्वतः ही सहज ही अपने उस समान में स्थित कर सकेंगे। यही बाबा चाहता है, किसी का आधार भी न हो, बाद में चित्र का भी आधार न हो, हम बस अपने समान में स्थित हो जाएं। और जितना हम समान में स्थित होंगे उससे फायदा क्या होगा कि हम किसी परिस्थिति में जिस शक्ति का आवाहन करना चाहेंगे वो शक्ति तुरंत ही हमारे पास दौड़ी हुई आएगी। बाबा ने कहा है, मानो कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर है, जब तक वो सीट पर होता है सब उसकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। किसी जगह पोस्टिंग है बस कोई हुक्म देगा सब उसकी बात को मानेंगे। लेकिन मानो वो सीट पर नहीं है, रिटायर हो गया, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, चला गया, तो उसकी बात को लोग सहज मानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सत्ता में ही नहीं है। बस यही बात हम बच्चों के साथ भी होती है, हम बच्चे स्वमान में स्थित होकर के शक्ति को ऑर्डर नहीं करते, चाहते हैं अभी मैं हलचल में हूं, मन में बहुत विचार चल रहे हैं, मेरे में समेटने की शक्ति आ जाए या सहन शक्ति आ जाए, चाहते हैं, लेकिन स्वमान में स्थित होकर के हम शक्ति को नहीं बुलाते, आवाहन नहीं करते, वो शक्ति भी हमारी बात नहीं मानती और हम शक्ति विहीन ही रह जाते हैं, तो परिस्थिति पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तो इस कारण से अभी आवश्यकता ये है कि हम स्वमान में स्थित होकर के उन शक्तियों का आवाहन करें। बाबा ने बताया है, देखो विज्ञान भी ना नए नए एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है, नई नई बात करता जा रहा है, जो बाबा के ज्ञान को सिद्ध करती है। बाबा ने बताया है प्रकृति के तत्व, इनको भी हम योगदान करें रोज, रोज इन्हें भी शक्ति दें, इनके साथ हम वार्तालाप करें, और प्रकृति के तत्वों को भी हम ऐसा अपने अनुकूल बना दें जैसा ब्रह्मा बाबा ने बना दिया। एक बड़े साइंटिस्ट जापान में होके गए हैं एमोटो, उन्होंने प्रयोग किया पानी के ऊपर, बड़ा सिंपल, बाबा देखो जो बात बताता है अभी वैज्ञानिक लोग उसे सिद्ध करते हैं। उन्होंने दो गिलास में पानी लिया और एक गिलास में अपने शुभ कामना शुभ भावना के वाइब्रेशन, गिलास पर लेबल भी लिखा मानो मदर टेरेसा, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, ऐसे पॉजिटिव शब्द लिखे, और उस गिलास के पानी को थोड़ी दूर पर रख के बस अपनी बहुत शुभ भावनाएं शुभकामनाएं दी, हे जल आप तो सृष्टि के जन्मदाता हो, आपके आधार पर सृष्टि चल रही है, आओ हम और आप मिल करके इस सृष्टि को और सुखमय बनाएं, आदि आदि पॉजिटिव वाइब्रेशन। और दूसरे गिलास में जो पानी लिया था उसमें निगेटिव वाइब्रेशन, उसमें लेबल भी लगाया एडोल्फ हिटलर, आई विल किल यू, और उसके अंदर ऐसी निगेटिव भावनाएं दी, ये जल आप तो बहुत ही जैसे विनाशकारी हो, आप आते हो कई बार सुनामी के रूप में, तो बहुतों को ले जाते हो आप, मृत्यु लाते हो, आदि आदि निगेटिव। और फिर उन्होंने उन्हीं पानी वही है बस अलग अलग एक ही सोर्स का पानी लिया हुआ, और उसके अंदर फिर उसको क्रिस्टलाइज किया और फिर देखा तो जहां पॉजिटिव वाइब्रेशन दी थी बड़े अच्छे अच्छे गहनों के ऑर्नामेंट की शेप के क्रिस्टल बने, देखते मन को लुभाने वाले, और जहां नेगेटिव दिया था वो बड़े भयानक जैसे और इररेगुलर शेप के। तो देखो जब दूर रखे पानी पर भी हमारे विचारों का इतना असर होता है, तो ये पानी 70% पानी तो हमारे शरीर में ही है, तो इसलिए शरीर के अंदर जो पानी है उस पर हमारे विचारों का कितना प्रभाव होता है। और जब हम कोई भी निगेटिव बात सोचते ही हैं, करने की बात तो दूसरी रही, जैसे ही हम सोचते हैं सोचने के बाद भी क्या होता है, वो शरीर जो है बीमारी कोई ना कोई कारणों से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए स्वस्थ स्वस्थ स्व स्थिति में स्थित, उसी को स्वस्थ कहा जाता है। तो हम जब स्वस्थिति से हम डगमग होते हैं, अलग होते हैं, घृणा ईर्ष्या द्वेष नेगेटिव फीलिंग होती है, तो ये पानी भी बीमारी का रूप। ऐसे अनेक अनेक प्रयोग है, आपको मालूम है कैसे हम शक्ति का प्रयोग करके अपने अफेक्टेड पार्ट पर करते हैं। तो हमारे यहाँ डॉक्टर लोगों ने भी प्रयोग किया, हृदय की धमनियां जो ब्लॉक हो जाती हैं वो खुल जाती हैं। पॉजिटिव प्रयोग से जो हमारे रूरल के हैं उन्होंने बीज के ऊपर धरती के ऊपर प्रयोग किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, कोई लौकी है सब्जी है टमाटर है आदि आदि। तो कहने का भाव क्या है कि हमारे अंदर की जितने वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगी अपने लिए दूसरों के लिए, वो एक नए सृष्टि का निर्माण करती है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि हमें अपने अंदर की जो बाबा कहते हैं मंशा हमारी इतनी नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, लवफुल हो, मंशा वाचा करुणा में ऐसी शक्ति हो, ज्ञान युक्त शक्ति हो और प्रेममय रूप से हमारा व्यवहार हो, तो ये प्रकृति को भी योग का दान करना हुआ। तो ये कैचिंग पावर भी है, प्रकृति भी हमें सिग्नल देती है, बाबा की तरफ से भी जो सिग्नल आते हैं उनको हम कैच कर सके। लेकिन साथ साथ प्रकृति ये जो पांच तत्व हैं, ये भी हमारी कैचिंग पावर अगर साफ होगी स्पष्ट होगी शक्तिशाली होगी, ये हमें सिग्नल देते हैं। तो जैसे मैंने बताया बाबा के अंदर मन को जीतकर इस प्रकार की स्थिति हो गई। 18 जनवरी को हम यहाँ थे, हमने देखा कि बाबा क्लास में आए, बाबा ने मुरली चलाई और मुरली चला के बस उस दिन बाबा को 18 तारीख की मुरली सुनो, एक बार भी खांसी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो अक्सर करके सर्दी का मौसम था, कई बार बाबा को गला साफ करने की जरूरत पड़ती थी, खांसी आती थी, तो बाबा कई बार कहता था बच्चे मैं शिव बाबा को कहता हूँ बाबा मेरा ये जो सखी है ना, इस सखी से मेरा पीछा छुड़ाओ। ये सखी बस मेरे साथ ही साथ लगी रहती है। कौन सी सखी? खांसी। हाँ बस इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या जवाब देता था? बच्चे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, हिसाब किताब है, अगर मैं तुम्हें कुछ कंसेशन करूं तो ये सारे बच्चे मेरे हैं, इन सबको भी मुझे कंसेशन करना पड़ेगा। लेकिन जिसने जो कर्म किए हैं उसे भोगने ही हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं, तो आपको या मुझे कोई कंसेशन होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा ना, जैसे बीमारी है बिल्कुल हंसते हंसते उसको स्वीकार करके चलो, ड्राई फ्रूट समझो बीमारियों को। और बाबा कहता ही नहीं था, बाबा का स्वरूप भी एकदम बदल जाता था। बस खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, लगता था बाबा को कष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण बस बाबा, अरे बच्चे देखो अभी बाबा को ये तकलीफ हो रही है लेकिन ये तो सब खत्म होने वाले हैं, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा, बस ओ क्या दुनिया होगी, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। बच्चे खुशी में क्या करना चाहिए? खग्गिया मारनी चाहिए, ये सिंधी शब्द है, खग्गिया मारनी चाहिए। बच्चे मालूम है कैसे खग्गी मारते हैं? सामने क्लास में बैठे हुए थे, सबने कहा कि नहीं बाबा हमें नहीं मालूम, तो बाबा ने करके दिखाया, बच्चे खुशी ऐसी हो ना बस एकदम हो, कल जाके मैं ये बनूंगा, हो ऐसे बाबा का चेहरा खुशी के अंदर पूरा का पूरा, जैसे जो एक मिनट पहले ही खांसी है तकलीफ है लगता था बाबा को बहुत कष्ट है, दूसरे ही क्षण बस बाबा कल जाके ये बनेगा, हो लक्ष्मी नारायण का कृष्ण का चित्र रखा रहता था। तो बस हमारा भी यही हो कि बस खुशी हमारी कभी गायब ना हो। और ये जितना जितना हम खुशी में रहेंगे ना, वो खुशी ही हमें कैचिंग पावर जो है हमारी स्पष्ट करने में और सहायक बनेगी। टचिंग पावर, कैचिंग पावर। और क्या करना है? कहते हैं ना, एक बार भक्ति मार्ग में आता है, ब्रह्मा जी ने रचना रची और सब देवी देवता मनुष्य रचे, तो लक्ष्मी जी की भी रचना हुई, अलग अलग देवताओं की, शनि देवता की भी रचना हुई। तो एक बार कंपटीशन हो गया, कहा सुनी होगी देवी देवताओं में कि कौन ज्यादा सुंदर है, कौन बलशाली है। तो बस लक्ष्मी जी को कंसीडर किया जाता है देवियों में, सबसे धन की भी अपनी सत्ता होती है, शक्ति होती है, वो भी सुंदर हैं, और उधर शनि देवता, उसको भी शनि की शक्ति भी बहुत मानी जाती है, भले दूसरी डायरेक्शन में चाहे सोची जाए। तो दोनों में कंपटीशन हुआ, दोनों ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ कैसे आना हुआ? तो उन्होंने बोला कि हम ये जानने आए हैं आपसे कि हम में कौन ज्यादा सुंदर है, शक्तिशाली है, अच्छा है, आप उसे उसका निर्णय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा बैठो, मैं जरा ये काम कर लूं। कुछ लिख रहे थे, कर रहे थे, फिर ब्रह्मा ने कहा, अच्छा वो जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, एक एक करके जाओ दोनों, उसे टच करके आ जाओ। तो बस पहले लक्ष्मी जी गए, धीरे धीरे उस पेड़ को टच किया, टच करके वापस आ गए। फिर थोड़ी देर बाद शनि जी गए, शनि देवता, वो वहां तक गए, उसे टच किया, वो आ गए। फिर दोनों बैठ गए ब्रह्मा जी को कि हाँ अपना निर्णय सुनाओ। तो ब्रह्मा जी ने निर्णय सुनाया कि दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और शनि जाता हुआ अच्छा लगता है। हाँ समझ गए ना? तो बोलना भी ना, बाबा ने जो बताया, कर्ण प्रिय हो। तो हर एक के अंदर कुछ न कुछ वीकनेस होती हैं, अच्छी बातें, कमजोरियां और शक्तियां होती हैं, लेकिन किसी की कमजोरी को हमें नहीं देखना है, उसको भी इस रीति से प्रस्तुत करना है कि वो उसकी शक्ति के रूप में परिणित हो जाए। तो बाबा को उस दिन देखा, एक बार भी खांसी नहीं आई 18 जनवरी को जब बाबा ने मुरली चलाई, और बिल्कुल इतनी फ्लॉलेस, जो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है, और बस फिर मनुष्य जो है ना, संपूर्ण हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं, और लगता है जैसे बाबा की कैचिंग पावर इतनी स्पष्ट थी। बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के बाहर गए, और जाने से पहले फिर रुके, दो कदम बढ़े आगे, हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही थी बाबा की, तब तो वही हॉल था। बाबा रुके, फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे, एक एक को दृष्टि दी। आगे दादी प्रकाशमणि जी भी बैठे हुए थे, बार बार बाबा की दृष्टि उनके पास आके रुक जाती थी, उनको और दृष्टि देते थे, फिर बाबा सब बच्चों को दृष्टि देते थे। फिर बाबा चले, दो कदम और आगे चले, फिर रुक गए, फिर आके बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि दी। बस बाबा को हो, बस शिव बाबा को कि आज मैं इस ब्रह्मा के द्वारा संपूर्ण रीति से बच्चों में बल भर दूं, शक्ति भर दूं। और उसके बाद बाबा हॉल के बाहर जाके बाबा ने कहा, क्या अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे। तो ऐसा आभास होता है जैसे ये बाबा की अपनी कैचिंग पावर थी ब्रह्मा बाबा की, कि बस जो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था बाबा को, आज ये बाबा से मेरा, बच्चों से मेरा अंतिम मिलन है। तभी बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द पहले कभी नहीं। इतनी क्लियर पावर हमारी भी होनी चाहिए, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, जो बाबा टच करना चाहे। और उसके बाद बाबा गए अपने कमरे में गए, और हम सब ने सुना है कैसे दादी जी के हाथ में हाथ देते, शक्तियां देते हुए बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन उससे वंडर तो इसके बाद क्या, कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को शाम को, सब तरफ टेलीग्राम गए, टेलीफोन गए, सब कहें बाबा का शरीर रखो, हम आ रहे हैं आ रहे हैं। तो 18 जनवरी की रात भर बाबा का शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन रखा रहा, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। तो इतना लगभग 65-70 घंटे तक बाबा का शरीर रखा रहा, लेकिन बाबा ने इतना प्रकृति के तत्वों को भी पावन बना दिया था, इतना योगदान करा हुआ था प्रकृति के तत्वों, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों का ही बना है ना। तो उस शरीर में न तो बिल्कुल वो काला पड़ा, न उसमें से कोई दुर्गंध आई, कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही लगता था कि बाबा जस्ट लेटा हुआ है, और हमेशा की भांति बस बच्चे जाएंगे तो बाबा बैठ के आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, जैसे बाबा करता था वैसे बाहें फैला के। इतना गौर वर्ण तो पूरा गोरा का गोरा ही रहा। डॉक्टरों से हमने बाद में कितनी बार, बड़े बड़े डॉक्टरों से भी पूछा, वो कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, न बाबा को कोई इंजेक्शन लगाया गया था, न कोई केमिकल लोशन दवाई वगैरह का लेप किया, कुछ नहीं, हम तो वहीं थे पूरा टाइम, हमने देखा, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ। ये है प्रकृति जीत बनने का लक्षण। तो बाबा ने प्रकृति के तत्वों को भी इतना पावन कर दिया था, जो प्रकृति के तत्व आदि से लेकर अंत तक हमारे सबसे निकट के साथी हैं। शरीर तो हमें हर जन्म में, हर कल्प में अलग अलग 84 बार मिलने ही हैं, लेकिन इन तत्वों को भी हम इतना पावन कर दें, और वो इसी समय कर सकते हैं, बस ये है जब हम खुद योग करते हैं, अन्य आत्माओं को भी योगदान करें, लेकिन जिन प्रकृति के तत्वों को इतना, उन्हें हम अपना मित्र बना लें। कैसे बनाएंगे मित्र? प्रकृति के तत्वों को भी। तो मित्रता होती है जिनमें संस्कार करीब करीब एक जैसे होते हैं, वो मित्रता उनमें हो जाती है। शराबी होगा, शराबी के साथ दोस्ती होगी, जो जैसे संस्कार वाले होंगे अपने जैसे संस्कार वालों से उनकी मित्रता होती है, और मित्रता समय पर एक दूसरे को सहयोग देती है। ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड कहा जाता है। तो हम मानो जल तत्व को मित्र बना लें। कैसे जल तत्व को मित्र बनाएंगे? जल का सबसे बड़ा गुण क्या है? शीतलता। उसके साथ साथ है जल में फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट पावर है। जल को जिस चीज में लो वैसा रूप धारण कर लेता है। मानो ये गिलास है, गिलास का रूप धारण कर लेगा। कटोरी हो, कटोरी में, चम्मच हो, चम्मच में, थाली हो, थाली में, हर जगह जल अपने को सेट कर लेता है। ऐसे हमारे संस्कार भी इतने हल्के हों, निर्मल हों, हम किसी भी आत्मा के साथ कहीं भी सेट होकर के चल सके। और जितने हमारे संस्कार हल्के निर्मल होंगे, बस हर आत्मा से सेट होकर चलेंगे, उतना क्या होगा, वो आत्मा भी हमें सहयोग देती चलेंगी, और हमारी कैचिंग पावर इंटर्न बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम योग लगाते हैं तो कोई ना कोई कार्य है, विपरीत परिस्थितियां हैं, किसी के भाव स्वभाव, वो सब योग के समय ही हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर हमारी अगर मित्रता ऐसी होगी तो बस कोई भी आत्मा हमारे योग के मार्ग में बाधक नहीं बनेगी। जल में और ऐसा ही गुण होता है, जल शीतलता होती है, सदैव आगे बढ़ता रहता है जल। हम भी सदा आगे बढ़ते रहें, और जल कभी रुक जाता है अगर, तो क्या होता है, उसमें बदबू आने लगती है, मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही हम सदा आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका प्रमाण ही यह है कि हमारे अंदर यह घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, निगेटिविटी, परचिंतन, ये सब निगेटिव बातें जो हैं, ये कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं मेरा आगे बढ़ना रुक गया है, क्योंकि जल जब रुकता है तब उसमें ये कीड़े पैदा होते हैं ना। तो इसलिए अपने आगे बढ़ने वाले रास्ते को सदा क्लियर करके हम आगे बढ़ते चले। बहुत गुण है, लेकिन मैं एक एक ही गुण बताऊंगा। ऐसी पृथ्वी है मानो, तो जल से क्या होगा, अगर हमने मित्रता कर ली ना, तो अंत समय में चाहे जितना फ्लड आएगा, सुनामी आएगी, जो भी हो, चूंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया, ये जल हमारी मृत्यु का दुख का कारण नहीं बन सकता कभी भी। क्यों? हमारा मित्र बन गया है। ऐसे पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी को अपना मित्र बना लें। पृथ्वी में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? हाँ, सहनशीलता। उससे भी बड़ा पृथ्वी का एक गुण है, पृथ्वी दाता है, देती है। सदैव आप एक बीज बोलो, पूरा पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी से ही हमें जल, पृथ्वी से ही भोजन, सब्जियां, सारा अन्न, हर चीज पृथ्वी से, मेटल, मिनरल, सब चीज पृथ्वी से मिलती है। ऐसे हम भी अगर ना दाता बन के चलते रहे, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, हर एक को हम शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, आदर, सत्कार, स्नेह, उसको सहयोग, हर आत्मा को अगर ये हम देते चलेंगे, तो जैसे हमने अपने संस्कार पृथ्वी से मिला लिए, तो जितना भी पृथ्वी में हलचल होगी, अर्थक्वेक आएगा, भूचाल आएगा, बहुत पृथ्वी हिलेगी, सब तरफ सब मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन मैंने अगर पृथ्वी को अपना मित्र बना लिया, पृथ्वी कभी भी हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। वो अंत में भी ऐसी परिस्थिति बन जाएंगी, पृथ्वी हमारे सहयोग के निमित्त बन जाएगी, हमारी प्राण रक्षा करने के लिए। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि गाया जाता है अंत मति सो गति का। अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसे गति होगी। अंत में मानो भूचाल आया, मकान गिरा हमारे ऊपर, ईंट पत्थर लोहा सब पड़ रहा है, तो उस समय इतने अशांत परिस्थिति में खून हो रहा है, हड्डी टूट रहे हैं, ऐसे में भगवान याद आएगा नहीं। तो ये पृथ्वी किसी न किसी रीति से हमें उस परिस्थिति से बचा के निकाल के ले जाएगी। ऐसे बहुत उदाहरण है, अभी तो समय के अभाव में नहीं बता सकते, कितनी जगह के अर्थक्वेक के उदाहरण, भूचाल के, कैसे हमारे भाई बहनों की, कैसे बाबा के बच्चों की अर्थक्वेक में रक्षा हुई, चारों तरफ विनाश विनाश, केवल वही बच्चे बचे रह गए। इसी प्रकार से वायु का क्या गुण है? वायु हर चीज को हल्का करके उड़ाती है, ऊपर ले जाती है। पृथ्वी हर चीज को खींचती है, वायु ऊपर ले जाती है। ऐसे ही हम भी हर परिस्थिति में हल्के रहे, भारी ना हो, और जितना हम अंदर से हल्के रहेंगे, उतना हम ऊपर 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 जाते जाएंगे, और हल्के होके उड़ने के कारण ये जल वायु तत्व को अगर हमने अपना मित्र बना लिया, तो जितना साइक्लोन आएंगे, जितना ये आएंगे, तूफान आएंगे, वायु की रफ्तार भी 150, 200 भी 300 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वायु तत्व हमारे मृत्यु का, दुख, अशांति का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वायु के गुण हमने धारण कर लिए। अग्नि, सूर्य, क्या विशेष गुण है सूर्य में? अग्नि रूप बदल देती है हर चीज का। ज्ञान सूर्य, सूर्य की तरफ अगर हमारा मुख होता है, परछाई हमारी पीछे होती है। ऐसे ज्ञान सूर्य बाबा की तरफ अगर हमारा मुख होगा, परछाई यानी छाया, माया, कमजोरियां, हमारी वीकनेस, वो हमारे पीछे रहेंगी, हमें गाइड नहीं करेंगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बाबा की छत्र छाया में पलेंगे, ये छाया का नाम निशान मिट जाएगा। बस सूरज भी जब एकदम दोपहर होती है, 12 बजे एकदम ऊपर होता है ना, तो परछाई बिल्कुल पैरों के अंदर समा जाती है, बिल्कुल होती नहीं। तो हम सदा बाबा की छत्र छाया में पलते रहें, बढ़ते रहें, ये कमजोरियों का अंत हो जाएगा बस। लेकिन जैसे ही सूर्य की तरफ हमारी पीठ हुई, तो छाया हमारे आगे आगे चलती है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, ये परछाइयां, कमजोरी। अभी हमें ये देखना है कि कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि हमारे अंदर की कमजोरियां हमारे आगे आगे बढ़ने के निमित्त बन जाए, वो मतलब आगे चलती रहे और हम कमजोरियों के वशीभूत होकर उनके पीछे चलते रहे। बस इसी तरीके से आकाश, आकाश की तरह हमारे हृदय में विशालता चाहिए। बस कितना विशाल है आकाश, ऐसे ही अगर हमने आकाश विशालता के वो धारण की होगी और आकाश के कारण ही आकाश में सैटेलाइट छोड़े होते हैं तो मोबाइल चालू रहता है, टीवी सब कुछ उसी के कारण है आकाश में हमने उपग्रह छोड़े हुए हैं। ऐसे ही हमें देखते चलना है कि मेरा भी कम्युनिकेशन, मेरा भी संबंध मानसिक सृष्टि की सभी आत्माओं के साथ हो। नहीं तो होता क्या है, जिनको हम अच्छा प्यार करते हैं, अच्छे लगते हैं, उनसे तो हम बहुत बात करते हैं, उनके साथ पसंद करते हैं रहना, और जिनसे हमारे संबंध में थोड़ी कटुता होती है वो सामने से भी आ रहा होता है, हम कट करके बच करके निकल जाते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, आकाश जैसी विशालता हमारे अंदर नहीं है। तो बाबा अब यही चाहता है, हृदय हमारा इतना विशाल हो दूसरे की कमी कमजोरियों को भी हम अपने अंदर समा लें। और बस इसीलिए बाबा ने कहा है, और जो गीता में भी कहा, अंत में हमारी स्थिति क्या होगी, जो गीता में कहा है, हर परिस्थिति में समान, मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत हानि लाभ दुख सुख जय पराजय, हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे। और ये कब होगा? जब हमारी आंतरिक अवस्था बहुत संतुष्ट खुशनुमा होगी, अंदर से हम खुश होंगे, बाहर की परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। बड़ा अच्छा कहा है किसी ने, सुना होगा आपने, फूल होता है ना, फूल को देख के सबको खुशी होती है, कोमल होता है, सब चाहते हैं फूल को रखना, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में हमें लगे कि अरे हमारी तो हार हुई, किसी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन नहीं, उसमें भी हमारी मानसिक स्थिति ऐसी रहे, चेहरा मुस्कुराता रहे, खुशनुमा रहे, और वही बाबा अभी चाहता है हर परिस्थिति में हम सदा आगे बढ़ते रहे। तो ये मनन चिंतन मन को हम ये प्रत्यक्ष बाबा का ये देखा किस प्रकार से बाबा ने प्रकृति के तत्वों को वश किया और अंत तक भी ये प्रकृति के तत्व बाबा का और साथ देते रहे। इसलिए अभी आवश्यकता ये है, हम संकल्प तक भी नहीं बल्कि इससे भी सूक्ष्म, बाबा जैसी स्मृति होती है वैसी वृत्ति होती है, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति कर्म होते हैं, और जैसी कृति होती है वैसी प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति के आधार पर ही हमारा संसार बनता है, बस सारा आधार ही हमारी स्मृति और वृत्ति पर है। तो हमें ये देखना है कि हमारी अंदर की भी स्मृति और वृत्ति कितने तक हमारी शुद्ध पवित्र हो रही है, जिसके की आधार पर ही हमारा कैचिंग पावर इतनी स्पष्ट इतनी क्लियर हो जाएगी, जैसी हम अभी दादियों को भी देखते हैं, बाबा का भी जैसे देखा, बिल्कुल इतनी क्लियर जैसे बाबा हमारे सम्मुख बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। इतना हमें शुद्ध पवित्र बन के आगे चलते चलना है, और जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे ये कैचिंग पावर यही हमारी उन्नति का साधन बन जाएगी। बस अब हमें यही करना है अंत में जो बाबा ने बताया है, और इसको करने के लिए एक बात हमें बस अंत में और ये देखनी है कि कितनी हम में निर्भयता की शक्ति आई है। निर्भयता, क्योंकि बाबा ने कहा है ऐसे खूने नाहक खेल होने हैं, इतनी विकट परिस्थितियां आनी हैं कि जो थोड़ा भी कमजोर होगा, भयभीत हो गया, वो ये दृश्य नहीं देख सकेगा, वो तो पहले ही हार्ट फेल हो जाएगा। तो निर्भयता की शक्ति, और ये निर्भयता की शक्ति कैसे आएगी, जो बाबा ने कहा है ये निर्भयता की शक्ति के लिए ना बाबा ने कुछ बातें एक दो बताई हैं। पहली बात, हमें भय क्यों होता है, अंत समय में हमें भय का भूत बहुत सता सकता है अंत समय में। तो इससे बचने का क्या साधन है, बाबा ने बताया है अंत में, एक तो हमारे जो पुराने संस्कार है उनका, विकारों का, लगाव का, पश्चाताप का, ये सारे के सारे ना हमारे सामने भय की तरह आएंगे। बस अगर हम ऐसे विनाश की परिस्थिति से मन को बचाना चाहते हैं तो क्या शक्ति धारण करें, विनाश से बचने के लिए निर्भयता की शक्ति। दूसरा, अगर विकारों से बचना चाहते हैं, अंत में सूक्ष्म विकार भी हमारे ऊपर बहुत आक्रमण करेंगे और ये सब हमारे जो कैचिंग पावर है, टचिंग पावर है, उसमें बाधक बनेंगे। इसलिए अगर विकारों से बचना चाहते हैं तो क्या करना है, इसमें अपने आदि और अनादि उस स्वरूप की स्मृति में, जो आदि मैं आत्मा स्वरूप हूं, फिर विकार की बात कहां से आए, जब देह की बात होती है तो विकार की बात होती है। और अनादि स्वरूप पवित्रता जो है हमारा, अनादि आत्मा स्वरूप और आदि जो है पवित्रता देवता स्वरूप। और लगाव के लिए क्या है, लगाव की अग्नि से बचने का साधन, ईश्वर को ही हम अपना, बाबा को ही हम अपना संसार बना लें, यही हमारा संसार है। नहीं तो अंत में ये लगाव, ये हमारे अंत में प्राण निकलने में बहुत बाधक बनेगा और जहां हमारा थोड़ा भी लगाव हुआ वहीं हमारा जाके पुनर्जन्म हो जाएगा और फिर से उधर की हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। और साथ में और कौन सा है, पश्चाताप की अग्नि। बाबा ने एक मुरली में बताया था, अंत में दुनिया तो पश्चाताप करेगी, आंसू पानी के आंसू रोएगी, लेकिन मेरे ब्राह्मण बच्चे भी पश्चाताप के आंसू यानी खून के आंसू रोएंगे। क्यों, वो बच्चे जिन्होंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया होगा, हे प्रभु आप आए, हमने आपको पहचाना भी, आपकी मत पर भी चले, लेकिन संपूर्ण रीति से हम नहीं चले, तो तब बहुत पश्चाताप होगा और खून के आंसू हमें न रोने पड़े। उसके लिए बाबा ने क्या बताया है, पश्चाताप के आंसुओं से बचने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। पश्चाताप कब होता है, सर्व प्राप्ति, जब प्राप्ति हमें नहीं होती है, प्राप्ति स्वरूप बनो, संतुष्ट रहेंगे। और प्राप्ति स्वरूप जब हम नहीं बन पाते हैं तो हमें पश्चाताप होता है। इसलिए अभी बाबा यही कह रहा है कि संतुष्ट मणि भव, हर मुरली में बाबा का ये आता है, उससे क्या होगा कि अंत समय हमें पश्चाताप का अनुभव नहीं होगा और हमारी बस अंत समय कोई ज्ञान देने वाला, कहने वाला, मुरली आने जाने, ये सब परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं हो सकेगा। वैज्ञानिक रीति से भी बताते हैं कि बस कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, ना प्लेन चल सकेंगे अंत में, ना कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात हो सकेगी, टेलीफोन, ये टीवी, ये सब खत्म हो जाए। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक पोलैरिटी, वो तो विज्ञान की बात है, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, सारा कम्युनिकेशन साधन विफल हो जाएंगे। बस यही हमारा कम्युनिकेशन जो हमारा मानसिक रीति से हम कर सकते हैं, बस यही कम्युनिकेशन हमारा होगा। और इसीलिए इसको हम अपना स्पष्ट इतना बना लें कि हमारा टचिंग पावर और ये बाबा जो कहता है कैचिंग पावर, ये इतना क्लियर हो जाए, जो बाबा की तरफ से जो भी हमें मैसेज आए, जो बात हो, हम धारण करके जीवन में आगे बढ़ते रहे। ओम शांति, ओम शांति।